أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات الله صل على محمد وآل محمد. أعزائي الغرامي، سورة بقرة کی یہ آئے وافی ہدایہ جس میں پروردگار عالم ذکر کے ساتھ ذکر کو ملا رہا ہے اور شرط کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ اگر اس کے بندے نے اس کو یاد رکھا تو خدا بھی اس کو یاد رکھے گا، اگر اس نے اللہ کا ذکر کیا تو خدا اس کا ایسا ذکر کرے گا کہ وہ ذکر ناتمام بن جائے. اور اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر بھی کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں، اور میرا شکر بھی کرو، میرا کفر نہ کرو. یعنی ایک اچھی صفت کے انجام دینے کے لیے حکم ہو رہا ہے، اور ایک بری صفت کو، صفات رذیلہ کو اپنی زندگی سے دور رکھنے کی تاکید کی جا رہی. شکر کہتے کسے ہیں؟ شکر کسی چیز کو ملنے پر یہ ڈسکلوز کرنا، یہ بتانا کہ یہ کس نے دی ہے. نعمت کے حاصل کرنے پر یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس کو دینے والا کون ہے. اور یہی صفت انسان میں اور حیوان میں فرق کرتی. حیوان شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اعتبار سے. لیکن انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت دی جائے تو اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے. اور اس زندگی کا چلنا، سانس کا آنا اور سانس کا جانا، اگر انسان چاہے تو شکر سے اس کی زبان رک نہیں سکتی، جس طرح اس کی دل کی دھڑکنیں نہیں رک سکتی. کیونکہ سانس کا اندر جانا بھی شکر کو واجب کرتا ہے، اور سانس کا صحیح طرح سے واپس آ جانا اس جہان فانی کی بس یہی کہانی ہے. ایک سانس آنی ہے، ایک سانس جانی ہے. یعنی گویا انا للہ و انا الیہ راجعون، ریٹرن ٹکٹ. हर आदमी अपना टिकट कंफर्म ले कर आए, सारे काम टाइम पे कर लेता कि मेरी फ्लाइट है वापसी की, सब कामों को तैयारी से कर लेता है। लेकिन जो खुद उसके फायदे की बात है उसमें बड़ी सुस्ती करता है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इंसान इस नफ्स को लेकर आया है, बहुत से बजाय इसके कि अपने नफ्स की इसलाह करें, अल्लाह पर ये एतराज कि फिर उसने नफ्स दिया क्यों जो हम ये गड़बड़ करते, हमें नफ्स दिया ही क्यों, ख्वाहिशाते नफ्स दी ही क्यों। ये तो वही बात हो गई कि शागिर्द को साल भर पढ़ाया, इम्तिहान लिया, वो फेल हो गया, उससे पूछा फेल क्यों हो गई, बोला उन्होंने सवाल दिए ही क्यों जो मैं गलत करता। अज़ीज़ाने गिरामी, एक क्लास से जब दूसरी क्लास में जाने के लिए इंसान को इम्तिहान की ज़रूरत है, तो फिर कमाल बशरियत के दर्जात को तय करने के लिए इंसान को जो रूह नबाती दी, रूह नबात यानी वेजिटेबल्स की तरह इंसान को भी बढ़ने की सलाहियत दी, माँ के शिकम में आया और बढ़ने लगा, अभी ये रूह नबाती थी, 4 महीने हुए, अल्लाह ने उसमें रूह हैवानी डाल दी कि अब ये जो है हैवानी सिस्टम में आ गया, इसमें रूह भी आ गई। जब रूह आ गई तो फिर उसके बाद इंसान को जब इस दुनिया में आ गया तो रूह हैवानी ही लेकर ज़िंदा रहा, लेकिन जैसे ही बालिग हुआ तो इसको रूह नातिका दी, रूह इंसानी दी, रूह कमालात दिए, ताकि इंसान अपने इस पर्दे को, जो पर्दे ताल्लुक, हिजाब ताल्लुक अपनी ज़िंदगी के साथ लेकर आया है, ना ये कि अपनी इस रूह को और ज़्यादा पर्दे मासियत में छुपा ले, इतना ज़्यादा संगीन बना ले कि फ़िक्र की परवाज़ ही रुक जाए, मारिफत के दर्जात ही रुक जाए, इंसान जो है कमालात की मंजिलों पर पहुँचना ही बंद कर दे, और अगर उसको कोई चीज़ मिले तो उसका जो है इस्तेमाल इस तरह से करना शुरू कर दे कि जिसके लिए खुदा ने मना किया है। तो शुक्र के माना यह हैं कि अल्लाह को पहचानना, मुनइम हकीकी को जानना। अगर आपको सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है या टेलीफोन नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ती है, अब लिखने का सिस्टम ही लोगों ने ख़त्म कर दिया, या वो मोबाइल आ गए जिससे हाफजा ख़राब करने की मशीन है, ये इससे हाफजा ख़राब होता है, समझ रहे ना। पहले आदमियों लोगों को याद होते थे बहुत सारे नंबर, अब तो मौली साहब के अलावा किसी का नंबर याद नहीं, किसी का नंबर याद नहीं। लेकिन हाँ, ये टेलीफोन ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। बहुत से एतराज़ करते थे कि अल्लाह की तस्बीह 100 मरतबा ही क्यों करें, जनाब फातिमा ने, उन्होंने तो 100 मरतबा टाइम था उनके पास, हम 150 करना चाहते हैं। बहुत से बड़े एतराज़ात आप किताबों में देखिए कि हम अल्लाह के जिक्र को उतना ही क्यों करें जितना जनाब सैयदा ने किया, हम भी तो चाहते हैं कि हम अल्लाह की कमालात में, अल्लाह के जिक्र में ज़्यादा हिस्सा लें, और 100 की जगह 150, 200, 500 आप ज़िंदगी भर तस्बीह पढ़ते रहिए, किसने मना किया है, ज़िंदगी भर तस्बीह पढ़ते रहिए। लेकिन ज़्यादा और कम जो आप सोच रहे हैं, हर चीज़ जो है कैलकुलेटेड है। मेरा जो है नंबर, मिसाल बता ही देता हूँ, आखिर में जो है सोशल सिक्योरिटी की तरह बता देता हूँ आखिर के 4 नंबर, कि आखिर का जो मेरा नंबर है वो 3519। कहा ये तो मौलाना अपने दोस्त हैं, इनको 19 की जगह 20 लिख दो, इनको 20 मिला दो, ये जान पहचान वाले हैं, इज्जत मुआब है, इनको एक नंबर ज़्यादा मिला। अब पता चला मिलना मौलाना को था, सवाल मौलाना से पूछना था, पता चला कहीं और मिल गया। एक बार मिलाया, दो बार मिलाया, तीसरी मरतबा का अब फ़ोन किया तो मैं 911 कॉल करता हूँ। तो मालूम ये हुआ कि इंसान ना सिर्फ ये कि अपनी मर्ज़ी से इन सब कामों को करता है, हर चीज़ कैलकुलेटेड। तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो अदद है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले, तो इंसान को इबादत इताअत की बुनियाद पे करनी चाहिए, आदत की बुनियाद पे नहीं करनी चाहिए, आदत की बुनियाद पे नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता है सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपने देखा होगा कि हदीसें मिलती हैं कि सदका देने से जो है 70 बलाओं से बचता है, एक साहब सफर करने के लिए जा रहे थे, संदूक के सदका में उन्होंने पैसे डाले, जैसे ही रोड क्रॉस किया कार ने टक्कर मार दी। अब सड़क पे लेटे हुए उस सदके के डब्बे को देख रहे हैं, ये क्या हुआ? मैंने तो पैसे डाले, 70 बला से दूर का लिखा हुआ भी है इस पर। थोड़ी देर में दूसरे साहब आए तो कहने लगे, इसमें मत डालो, ये काम नहीं कर रहा है ये डब्बा, लेकिन आईसी का डब्बा काम कर रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ के डब्बे काम कर रहे हैं, आप डालिए इसमें। तो बाज़ अवकात सिस्टम बिगड़ जाता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए कहा गया है, खुदावंद आलम की इताअत के लिए जिस उनवान से कहा गया है, वो मतलब शुक्र के माना ये हैं कि मुनइम हकीकी को पहचानना और उसका शुक्र अदा करना, उसकी हमदो सना करना, उसकी तारीफ करना। ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं इसको और ज्यादा कर दूंगा नेमत को। सीधा सा फार्मूला है, तो सीधा सा फार्मूला है कि अगर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पैसे नहीं मांग रहा। दूसरे तो कहते हैं ज्यादा इन्वेस्ट करो ज्यादा फायदा होगा, यहां पर कुछ भी नहीं करना है बल्कि उसका शुक्र अदा करना है, शुक्र अदा करना है। बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसा, आपने देखा होगा यहाँ मार्केटिंग में बड़ा बड़ा एक से एक सवालात। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको फायदा होगा, आप सेव करेंगे। क्या सेव करेंगे भैया, जब पैसे ही दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कहते नहीं, हमारी एयरलाइन से सफर कीजिए, आप सेव करेंगे, आप हमसे खरीदिए, हमसे सेव करेंगे। तो वो भी कहने लगे कि आप आइए और आने के बाद अपनी पैसा लगाइए। और मैंने कहा कितना सेव करेंगे? कहा साल में $2,000 आप सेव करें। तो मैंने उनसे कहा $2,000 तो मैं रोज सेव करता हूँ। तो कहने लगे आपकी अर्निंग क्या है? तो मैंने कहा अर्निंग वर्निंग नहीं पूछो आप ये पूछो मैं सेव कितने, अभी सेविंग की बात हो रही, तो आप कैसे सेव करते हैं? कहा मैं रेड लाइट पे बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाता हूँ, हर रेड लाइट पे $200 बचाता हूँ, सेव करता हूँ, और दिन भर में मैं जो है 10 लाइटें बड़े इत्मीनान से तय करता हूँ, $2,000 में सेव करता हूँ। तो मेरा मुंह देखने लगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ मार्केटिंग में चलिए आप। ये दुनिया है, इस दुनिया के चक्करों में नहीं आना। हमें वही करना है जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ने बताई, कि खुदा वंदे आलम ने जो तरीका शुक्र बताया है, पहाड़ पे भाग जाने का नाम शुक्र नहीं है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को छोड़ देने का नाम शुक्र नहीं है, इन चीजों का नाम शुक्र नहीं है, बल्कि शुक्र जो कुछ मिले उसका सही इस्तेमाल करने का नाम शुक्र है, जो कुछ मिले उसके बदले में अल्लाह की हम्द और सना करने का शुक्र है। इसी वजह से तो इंसान शाकिर कहलाता है और उसी को ईमान का दर्जा मिलता है, और जो अल्लाह की नेमतों को छुपा देता है उसको काफिर कहा जाता है। काफिर छुपाने वाले को कहते हैं, काफिर किसी नाम नाम और से नहीं होता है, काफिर के उस घर में तो काफिर नहीं। अगर कोई अल्लाह की नेमतों को छुपाता है तो वो काफिर है। खुदावंद आलम यही तो चाहता है कि मेरी शुक्रगुजार बंदे बनो, साहिब ईमान बंदे बनो, ताकि तुम्हें इस शुक्रगुजारी के बूते पर खुदावंद मन्नान जो है आला और अरफा मुकाम पर तुम्हें पहुंचा दे। कहते हैं कि अल्लाह की रजा के मुताबिक अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल करना। अगर अल्लाह की रजा के बगैर इंसान नेमत का इस्तेमाल करे तो वो भी कुफ्र है, शुक्र नहीं है, क्योंकि खुदा दे रहा है, बेशक वो वापस नहीं लेगा, लेकिन हिसाब लेना उसकी जिम्मेदारी है, वो हिसाब लेगा। बाज़ औक़ात जो है लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ मिल जाए तो बस फिर तो खुदा भी हमसे नहीं ले सकता। बहुत से लोगों का ऐसा, एक शख्स इमाम मूसे काजिम अलैहि सलाम के पास आया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आजकल बहुत आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं लोग, मौली साहब इसमें आजम सिखा दीजिए मुझे, बस इसमें आजम बता दीजिए, इसमें आजम का इल्म चाहिए, बस वो आ जाए उसके बाद तो सब बड़ा अच्छा नेटवर्क चलेगा। वो आया, आने के बाद पूरी दुनिया में घूमी आया, आने के बाद कहता फर्जंद रसूल मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन मुझे इसमें आजम नहीं मिला, मैं चाहता हूँ आप मुझे इसमें आजम का इल्म तालीम करें, मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने सोचा कि शायद यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन वो गलत जगह पे आ गया। यहाँ पर जो है हुब्बे नफ्स नहीं पाई जाती, यहां पर अपने नफ्स की बुलंद को कोई अगर बुलंद कह दे तो यहां पर ऐसा नहीं होता, खुदा का शुक्र अदा किया जाता है और खुदा की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल किया जाता है। इमाम ने फरमाया कि देखो जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए काफी है, अगर तुम और ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो तुम अपने इस रास्ते को भी भूल जाओगे, लिहाजा जितना है शुक्र करो। कहने लगा नहीं फर्जंदे रसूल, अब तो मेरी इज्जत का मसला आ गया है और आपकी इज्जत का भी मसला है, और अब मुझे तो ये इसमें आजम आप तालीम ही फरमाइए। इमाम ने उसका कहा इम्तिहान लूंगा मैं तुम्हारा, कहा कि हाँ इम्तिहान ले लीजिए आप मेरा, इम्तिहान के लिए मैं तैयार हूँ। इमाम ने फरमाया कल सुबह फला पुल पे आ जाना। वो शख्स वहां पर आके सुबह से खड़ा हो गया, इमाम आ तो गए थे राइट टाइम, इमाम वक्त पे आ गए थे लेकिन देख रहे थे खड़े हो गए, इम्तिहान ले रहे थे उसका। ये बड़ा इंतजार कर रहा, टहल रहा पुल पे, रास्ते में क्या देखा कि एक बूढ़ा एक ज़ईफ़ इंसान जंगल से लकड़ियां तोड़ के ला रहा था। पहले लाते थे ना बंच, गट्ठर को अपने पीठ पे रख के बेचारा ला रहा था बड़ी मुश्किल से। अब लकड़ी का कोई टुकड़ा निकल रहा था, वो उसके चुभ गया, उसने हर्ट कर दिया। इस ज़ईफ को पता नहीं चला और कितना हर्ट किया होगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बहरहाल इसको बड़ा गुस्सा आया और ये इसका पीछा करते करते पुल के बीच में चला गया। जब ये ज़ईफ़ इंसान पुल के बीचों बीच पहुंच गया, मिडिल ऑफ द ब्रिज पहुंच गया, तो इस शख्स ने उनको बहुत ज़्यादा पीटा और उनको नहर में फेंक दिया, उस ज़ईफ़ इंसान को नहर में फेंक दिया। ये बेचारे लकड़ियाँ तो बह गई, अपनी जान बचा के वापस आए, बाहर निकले, बजाय इसके कि इनसे कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो ज़ईफ़ इनसे माफ़ी मांगने लगे, भाई मुझे लगता है मुझसे तुम्हें कोई शिकायत रही है, लगता है मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है, अगर मुझसे कोई नुकसान हुआ है भूले में तो मुझे माफ़ कर दो। तो ये बड़ा गुस्से हुआ, कहने लगा जबान चलाते हो चले जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बेचारा सर झुका के चला गया। ये बड़ा रंग बदल गया, सुर्ख रंग हो रहा है इसका। इमाम तशरीफ़ लाए, क्योंकि इसको अपना काम था इसलिए खड़ा रहा। इमाम ने कहा क्या बात है बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, कहा फर्जंदे रसूल दिखता विकता है नहीं और चले आते हैं। तो कहा किस पे नाराज हो, कहा कि इस बूढ़े पे नाराज हो। इमाम ने फरमाया कि अभी तुम्हारे पास इसमें आजम का इल्म होता तो तुम इस बूढ़े का क्या करते। उसने कहा कि मैं इसको जानवर बना देता, इसको मैं जानवर बना देता ताकि इसको पता चलता किससे पाला पड़ा है। तो इमाम ने कहा कि उस बूढ़े के पास इसमें आजम का इल्म था, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। उसके पास इसमें आजम का इल्म था और यकीन जानना अगर मैं तुम्हें इसमें आजम का इल्म दे भी दूं तो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए दिल की ज़र्फियत चाहिए, कुलूब की ज़र्फियत चाहिए। अगर ज़र्फियत नहीं है तो फिर कोई इसमें आजम काम करने वाला नहीं। हम बहुत सी दुआएं पढ़ते हैं, बहुत से वजीफे करते हैं, बहुत से काम करते हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम को चेक नहीं करते कि हमारा सिस्टम कहां से ख़राब है। कुरान मजीद ने इस मौजू को बहुत ही शिद्दत के साथ लिया है। खुदावंद आलम 11 कस्में खाने के बाद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशम्स वज़ुहाहा वलक़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यख्शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़्वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्का। कामयाबी उसको मिलेगी जिसने अपना दिल पाक कर लिया, जिसने अपना तज़किया है नफ्स कर लिया, अपने दिल को पाक कर लिया, कामयाबी उसके लिए बकिया चाहे जो कर ले। छोटे भाइयों को मिसाल के तौर पर अक्सर मैं मिसाल बयान करता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम कहीं मजलिस पढ़ने गए, अब यहाँ का सिस्टम ही दूसरा है, मिसालें भी नहीं चलती। यहाँ पे जो है क्रोगर में दूध का गैलन मिलता है, हमारे यहाँ पे दूध देने वाला घर पे आता है हमारे ममालिक में, तो हम दूध तबलीग के लिए दूसरे शहर गए, हर रोज़ की तरह जो दूध देने वाला आता था उसने बेल बजाई, हमारी बच्ची से हमारी अलिया ने कहा जाओ बेटा बर्तन ले जाओ दूध ले आओ, वो बच्ची गई और जाने के बाद उसने दूध के लिए बर्तन दे दिया, दूध वाले ने उसमें दूध नाप के दे दिया, वो चले गए, जब दूध गर्म किया तो फट गया। अब शिकायतों का पहाड़ खड़ा हो गया कि आप एक दिन के लिए क्या चले गए, हमने इसने हमें फासिद दूध दे दी। अब मौली साहब भी बगैर हुज्जत बगैर दलील के उनसे कहने लगे, सरकार हम आपको पैसे बड़ी ईमानदारी के देते हैं, आपने एक दिन की भी हमारी शर्म नहीं की और आपने हमारे घर वालों को जो है फासिद दूध दे दिया, ख़राब दूध दे दिया। उसने कहा, मौलाना मैं आपको तनहा तो दूध नहीं देता, पूरी बिल्डिंग को दूध देता हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, आप ज़रा दरियाफ्त करवा लीजिए कि और लोगों का भी दूध फटा या नहीं। हमने जब मालूम किया, हमने कहा नहीं, हमारा दूध तो नहीं फटा। तो चलते चलते उसने हमें एक तालीम दे दी कि मौली साहब ज़रा बर्तन चेक कर लो, मिर्चों वाला तो नहीं था। अब हमने आके देखा तो मिर्चों वाला बर्तन था। अब चाहे हम कितना ही ताज़ा और बढ़िया दूध उसमें डाल दें तो फट जाएगा। तो अजीज़ाने गिरामी, जब तक हमारा दिल पाक नहीं होगा, ना तो कोई इबादत हमारे काम आनी है, ना कोई रियाजत हमारे काम आनी है, ना कोई सच्चाई और अच्छाई हमारे काम आनी है। क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि कद अफलह मन ज़क्का, फला उसी को मिलेगी कि जिसने तज़किया नफ्स कर लिया, जिसने अपने आप को पाक कर लिया। अजीज़ाने गिरामी, बस शुक्र के माना यही है कि सिद्क दिल से उसको पुकार लिया जाए, अपने दिल में ये ख्याल लाना कि खुदाया तू कितना अजीम है जो मुझे नेमतों पे नेमतें दिए जाता है। खुदा की कसम, उसको ज़बान के हिलने की भी ज़रूरत नहीं, उसको ज़बान के हिलने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने अपने ज़िक्र को जो सैयदुल अज़कार कहा है, वो वाहिद ज़िक्र ऐसा है कि जिसमें ज़बान के अलावा होठ भी नहीं हिलते। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आप पढ़िए कभी, आपके होठ भी नहीं हिलेंगे, सिर्फ ज़बान के ऊपर नीचे होने से। खुदा कहता इतना मेरे लिए काफ़ी कि तुम गैर खुदाओं का इनकार कर दो और मेरी वहदानियत को कबूल कर लो, तो मैं तुम्हें इन शकर तुम लादीदन्नक, अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हारी इन नेमतों को ज़्यादा करूँगा। कहते कि शुक्र गुजारी नफ्स इंसान के कमाल का पता देती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान कितना अजीम है, तो नेमत या छोटी सी छोटी उसके साथ अच्छाई करने पर आप देखिए रिटर्न में क्या देता है। आप दस्तखत करने के लिए कलम मांगते हैं, अगर आपको उसने कलम दिया, आपने दस्तखत करने के बाद फेंक दिया उसको, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि ज़िंदगी में कोई आपको कलम दे देगा? वो तो कम से कम नहीं देगा, जिसने देखा है वो भी नहीं देगा। और अगर आपने शुक्रिया अदा किया तो मुमकिन हो क्या, नहीं आप रख लीजिए मेरे पास इजाफी है। तो शुक्र जो है ये ना सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह तो कहता है फरमाता है, खुद रसूल अल्लाह की हदीस है, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जिसने अल्लाह की मखलूक का शुक्र अदा नहीं किया, उसने गोया खालिक का भी शुक्र अदा नहीं किया। लिहाजा अब शुक्र तीन मरहलों में होता है। पहला शुक्र जबान के जरिए, खुदाया तेरी नेमतों का लाख लाख शुक्र एहसान। मेरे उस्ताद ने मुझे एक छोटी सी दुआ सिखाई थी, कहा कि इस दुआ को जरूर पढ़, बड़ी इरफानी दुआ है उर्दू जबान में ही, इलाही शुक्र बे उम्मीद है तू, खुदाया अब तक की नेमतों का शुक्र और आने वाली नेमतों के लिए तुझसे उम्मीद। इरफानी दुआ है छोटी सी, तमाम चीज़ें आप इलाही शुक्र बे उम्मीद है तू, खुदाया तेरी तमाम नेमतों का शुक्रगुजार हूँ और आगे के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। जाने ग्रामी, जबान से अगर ज़रा सा इंसान कह दे तो ज़बान का शुक्र, अल्लाह की हमदो सना करना, शुक्रगुजारी करना, उसके बाद अमल का शुक्र, उसकी दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करना, आँखों को सही इस्तेमाल करना, ज़बान का सही इस्तेमाल करना, पैरों का हाथों का सही इस्तेमाल करना। आपको मालूम है सही, चूँकि इसमें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, ना ट्यूशन की ज़रूरत है, ना ज़रूरत है बताने की, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, हमने हर नफ्स को अच्छाई और बुराई बता दी। आज आप डिक्शनरी देखें या ना देखें कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन अच्छाई और बुराई को समझता है हर इंसान, अच्छाई बुराई को समझता है। अल्लाह ने सबको ये इल्म दिया है, हलाकत से बचने का इल्म दिया है, इसको इल्म तकवीनी कहते हैं। और इंसान तो इंसान, हैवानात तक को ये इल्म दिया है अल्लाह ने कि उनको अपनी हलाकत से बचने का इल्म है। आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, एक बतख का अंडा लीजिए, एक मुर्गी का अंडा लीजिए, उसमें से जो बच्चे निकले चूजे चिकन, तो आप उनको दरिया के किनारे छोड़िए, दिखने में दोनों कजिन हैं, लेकिन बतख का बच्चा दौड़ के पानी में चला जाता है, मुर्गी का बच्चा पानी से दूर भागता है। ना कोई ट्यूशन गए, ना माँ ने कोई तालीम दी, ना कोई किताब पढ़ी, ना कोई इंटरनेट देखा, कुछ नहीं देखा लेकिन अपनी हलाकत से बचने का इल्म है। अल्लाह ने ये वदियत किया है, इंसान को वदियत किया है। बाज़ औक़ात हमारे ज़हनों में ये बात आती भी है कि मसलन खुदा बंदे आलम ने जो चीज़ें हक पर मबनी हैं उनको फितरी तौर पे इंसान को दिया है। अल्लाह की इबादत करना इंसान की फितरत है कि वो उसकी फितरत है कि वो किसी को माने। अब खिलाफ है फितरत कोई आदत हो जाए वो और दूसरी बात है, बकिया फितरत ही है और उसी की बुनियाद पे लोग बुतपरस्ती भी करते हैं। बुतपरस्ती भी इसी बुनियाद पे होती है क्योंकि फितरत है कि किसी को माना जाए, अपने मुनिम को पहचाना जाए। मिसाल के तौर पे बच्चा है सहन में खेलता है, यहाँ तो पता नहीं हो सहन मिट्टी वाले, हमारे वहाँ तो मिट्टी में बच्चे खेलते रहते हैं। बच्चा मिट्टी में खेल रहा है सहन में, खाने का टाइम हुआ, उसको ये मालूम है कि भूख लग रही है तो कुछ खाना चाहिए। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोता है, कॉल करता है माँ को, माँ काम में मसरूफ़ है, सीरियल देख रही है, टीवी में है, कहीं भी है। अब वो बच्चा रोता है, रोता रहता है, रोता रहता है, कहता है ऐसे तो सुनी नहीं रही। तो फिर वो सोचता है कि अब खुद तदबीर करनी चाहिए, खाना कमाना चाहिए। अब वो बच्चा क्या करता है, कहता है कि अम्मा यहाँ से कोई चीज़ डालती है तब ये पेट भर जाता है, लिहाजा वो सहने खाना की मिट्टी खा जाता है, सहन की मिट्टी खाने लगता है। पहले दिन तो उसको बड़ा बुरा लगता है, फिर अगले दिन फिर रोया, फिर कुछ नहीं, उसने कहा ये खाई थी तो सही हो गया था, फिर वो खाता है। धीरे धीरे उसको उस मिट्टी में लज्जत पैदा हो जाती और उसका जिस्म उस मिट्टी से आशना हो जाता है। लिहाजा बच्चों को आप चॉकलेट भी दोगे तो नहीं खाएगा, वो मिट्टी ही खाएगा। जो बच्चे चूना खाते हैं, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, आपने देखा उनको आदत हो गई। परस्तिश करना फितरत का तकाजा था, लेकिन सही वक्त पे कोई गाइडेंस ना मिला तो उसने कभी बुतों को अपना खुदा मान लिया, कभी दरख्तों को अपना खुदा मान लिया, कभी सूरज को अपना खुदा मान लिया, कभी चांद को अपना खुदा मान लिया। यानी तकाजा फितरत ये था और फितरत ये भी बता रही थी कि देखो तुम इसको मान जरूर रहे हो लेकिन फिर भी तुम हमारे हो, तुम बुत परस्ती जरूर कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम हमारे हो। जब कभी भी मांगने का मौका आएगा तो फिर बुत की आंख में आंख नहीं डालोगे बल्कि आंखें बंद करके मांगने लगोगे। बड़े से बड़ा इंसान जाता है तो मंदिर जाता है, दरगाह जाता है, जहां चला जाए जब मांगने का मरहला आता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती। आंखों का बंद होना इस बात की दलील है कि मरकज कुछ और है, कि जहां से ये मांग रहा है और फिर वहां से मिलता भी है। फिर लोगों को गलत फहमी हो जाती है, यहां खड़े होके मांगा था इसलिए मिल गया। ऐसा निगरानी जब वो मालिक कहता है तो मालिक तो वही है, वो ये थोड़ी कहेगा नहीं दूसरे मालिक से मांगो, नहीं वो ऐसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं, वो मांगता जरूर देता है, जरूर देता है। लिहाजा लोग सोचते हैं मैंने यहां खड़े होके मांगा था लिहाजा मेरी मुरादें पूरी हो गई हैं, इसीलिए बस उसने कहा इसका नाम देवता है, मैंने यहां मांगा था इसने दे दिया। तो अजीज आने के रामी उसको भी मालूम है कि किसने दिया है। तो ये फितरी चीजें, शुक्र की अदायगी इंसान की फितरत है। अगर बच्चा रो रहा है और माँ ने दूध दे दिया तो चुप हो जाता, उसका खामोशी शुक्र है, उसकी खामोशी शुक्र है, ये बचपने से जानता है बच्चा, क्योंकि जो मांग रहा था वो मिल गया, अब रोने की जरूरत नहीं, खामोश हो जाता है, मुस्कुराता है, माँ का भी दिल खुश हो जाता है, घर वाले भी खुश हो जाते कि चुप हो गया। तो अजीज़ाने गिरामी अगर इंसान अपने अमल के तौर पे, अपने आज़ा के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो फिर उसको ये चाहिए। कहते हैं कि शुक्रगुजारी के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में बहुत सी आयतें नाजिल फरमाई हैं और अपने बंदों को वशकुरुली वला तकफरून, देखो अगर मेरे बंदे बनना चाहते हो तो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें हर मुकाम पर याद रखूँगा और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना, कुफ्र ना करना, चूँकि अल्लाह के नज़दीक कुफ्र करना बहुत बड़ी जलालत है। कुफ्र के माना ये होते हैं कि ले भी रहे हो और उसको पहचान, उसको भूल भी रहे हो, लिहाजा उसके और नुकसानात होते चले जाते हैं। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी शुक्र की मंजिलतें बहुत है। कहते हैं कि शुक्र दिल से शुक्र अदा होता है, जबान से शुक्र अदा होता है, आज़ा से शुक्र अदा होता है, और अजीम नेमतों पर जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो खुदा बंदे आलम जो है उसके शुक्र के मुकाबले में फितरतों को भी बदल देता है, कानूनों को बदल देता है। यकीन जानिएगा जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है, उसकी बातों को पूरा करता है, उसके फरामीन पर अमल करता है तो फिर वो सारी बातें खत्म होती चली जाती हैं। हजरत मूसा तूर पे जाते थे, खुदा भी उनके बड़े जो है बनी इधर तो मिल गए बनी इसराइल, उधर मिल गया खुदा, अब जाते सवाल करते तो खुदा भी एक नया सवाल और देता था, जाओ ये करके आओ, उनको होमवर्क दे देते। एक दिन मूसा से कहा, मूसा खुदा को इंसान का गोश्त चाहिए, इंसान का गोश्त लेके आना बस्ती में, सुना है बड़े चाहने वाले हैं तुम्हारे, बड़े मेरे मानने वाले हैं। मसला यह हुआ था कि एक शख्स ने कहा, मूसा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे औलाद नहीं। मूसा ने कहा, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं। मूसा तो ये कहकर चले गए। एक फकीर आया, उसने कहा कि एक रोटी दे दो। कहा कि रोटी तो मिल जाएगी, क्या इसके बदले में तुम मेरे लिए दुआ कर सकते हो? कहा क्या दुआ करनी है? कहा कि अल्लाह मुझे औलाद दे। कहा अरे बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा गनी है, उसके माल में कोई कमी नहीं है, वो तुम्हें ज़रूर औलाद देगा। उसके औलाद हो गई। मूसा को पकड़ लिया, मूसा तुमने तो कहा था मेरे नसीब में औलाद नहीं है। तो मूसा ने कहा, सिस्टम तो यही बताता था कि तुम्हारे औलाद नहीं हो। कहा कि उस फकीर ने दुआ की, उसकी एक रोटी के बदले में उसने मुझे औलाद की दुआ कर दी और पूरी हो गई। मूसा तूर पे जाए गए कि खुदाए ये क्या मसला है, मेरे से तो कह दिया सिस्टम ये, इसके औलाद नहीं है, और उस फकीर ने कहा तो उसको एक औलाद दे दी तूने। तो कहा कि भाई क्या किया? कहा मूसा ये होमवर्क करके लाओ, जाओ पहले इंसान का गोश्त लेके आना कल। मूसा ने कहा कि ठीक है। अब वो बस्ती में गए, दरवाज़ा खटखटाया, भाई क्या बात है? कहा थोड़ा अल्लाह को आपका इंसान का गोश्त चाहिए, ज़रा सा गोश्त काट। कहा मूसा सुबह सुबह कहीं और जाओ, इस दरवाजे पे उस दरवाजे पे पूरा दिन गुजर गया, लेकिन किसी बंदे खुदा ने अपना गोश्त काट के नहीं दिया। मूसा बस्ती से बाहर निकल गए, नहर के किनारे बैठे हुए थे, क्या देखा कि एक फकीर एक आरिफ वहां बैठा हुआ। कहा मूसा क्यों मुंह लटकाए हुए बैठे हो, क्या बात है? कहा कि तूर पे जाना था, अल्लाह ने इंसान का गोश्त मंगाया था, लिहाजा किसी ने नहीं दिया पूरी बस्ती में। कहा मूसा तुम भी क्या याद रखोगे, इधर आओ, कहाँ का गोश्त चाहिए? शायद हाथ का गोश्त उसको ज़रूरत हो। उसने हाथ का गोश्त काट के दिया, पैर का गोश्त काट के दिया, बदन के आज़ा का गोश्त काट काट के तश्त को भर दिया। कहा कि मूसा जाओ। तो कहा कि तुमने अकेले ने इतना गोश्त दे दिया? कहा मूसा सब तुम्हें गोश्त देते, लेकिन अगर तुमने अपना गोश्त डाला होता तो, अगर सबसे पहले अपना गोश्त डाला होता, अपना हिस्सा डाला होता, तो तुम्हें सब गोश्त देते। अब खुदा के पास गया कि मूसा अब बताओ, तुम इंसाफ करो कि मैं किसकी बातों को सुनूं और किसकी बातों को ठुकराऊं। इसने बगैर मांगे मेरे के ना जाने कौन सा मेरे जिस्म का गोश्त पसंद हो, कहा कि ये दुनिया मेरे उरफा की वजह से चल रही है, ये दुनिया मेरे चाहने वालों की वजह से चल रही है, जिनकी वजह से, जिनके सदक़े में ना जाने मैं कितने हज़ारों आदमियों को बख्श देता हूँ, जिनके सदक़े में ना जाने कितने भूखों का पेट भर देता हूँ। अगर ऐसे इंसान ज़मीन पर ना हो तो फिर मेरा कोई शुक्रगुजार बंदा चाहिए मुझे, मुझे शुक्रगुजार बंदा चाहिए जो जबान से भी शुक्र अदा करता हो, अपने अमल से भी शुक्र अदा करता हो, अपने आज़ा से भी शुक्र अदा करता हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा शुक्रगुजारी जो है इंसान को, कहते हैं कि शुक्रगुजारी कुरान और अहादीस में जो बयान की गई है, कहते हैं कि पाकीजा नफ्स की सिफत है, ये इंसान को डायरेक्ट अल्लाह से मिला देती। शुक्रगुजारी, थैंक्स, हर उसमें जो है, बल्कि अब तो दुनिया को इतना महदूद कर दिया गया कि एक दिन इस काम के लिए बनाया गया थैंक्स गिविंग, बनाना पड़ा, क्या करें, लोगों में दोस्ती खत्म हो गई तो वेलेंटाइन डे बना दिया कि भाई ये करो, इस दिन तो दोस्ती करो ही करो। यानी इंसान को इन सब चीज़, हाल दीन अल्लाह हुब, क्या दीन मोहब्बतों के सिवा कोई और चीज़ है? इमाम यही तो फरमाते हैं कि दीन मोहब्बत का नाम है, कि जहाँ पर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे की मदद करे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, सीधी सीधी अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। उल्टी ज़िंदगी के लिए इंसान को सख्ती झेलनी पड़ती है, सीधी ज़िंदगी के लिए नहीं। बिल्कुल वैसे ही एक गेम है कि जो पहाड़ से कश्ती, पानी जब पानी गिरता है तो उसके साथ साथ एक कश्ती, तो वो वाला जो है ना आसान, वो नेचुरल गेम है कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही जाना है। अब आदमी सोचे नहीं, इसके उल्टे में कश्ती चलाऊंगा तो फिर उसको सख्ती का सामना करना पड़ेगा, फिर उसको कोई दूसरे काम अंजाम देने पड़ेंगे। लिहाजा जिस तरह से खुदा वंदे आलम इस दुनिया का धारा चलाना चाहता है, उस धारे को वैसे ही चलते रहना चाहिए। अजीजाने गिरामी, हमारा मसाला चल रहा था मदरसा हुसैनी का। मदरसा हुसैनी वो मदरसा जो सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 दिन के लिए लगाया, 10 दिन के लिए लगाया था, बल्कि 10 दिन भी नहीं, 8 दिन मान लीजिए कि 8 दिन में जो इमाम के पास आते रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया के बड़े बड़े मौजूआत को हल करके रख दिया, बड़े बड़े मौजूआत को हल करके रख दिया। वलव यह कि ये मदरसा फिर कहीं और जाके बज़ाहिर नशर नहीं हुआ, लेकिन हमारे सलाम व ज़ैनब उलिया मुकाम पर کہ حسین کی ایک ایک بات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو امام حسین علیہ السلام کے مدرسے کی سب سے پہلی شرط یہ تھی حریت اور آزادی. امام حسین علیہ السلام لوگوں کو نفس کی قید سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو اسیر بنا لیا گیا تھا نفس کا, دیکھو اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, اگر حسین کا ساتھ دو گے تو تمہاری دنیا لٹ جائے گی, یہ ساری زمین جائیداد چلی جائے گی. اتنا زیادہ انسانوں کو الجھا دیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو سانس لینے کا وقت نہیں ہے, کام کرنا ہے پھر کام کرنا ہے. انسان کے پاس اپنے سوچنے کے بارے میں, اور ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اگر جاب لیس ہوا تو ہوم لیس بھی ہو جائے گا, ایسا خوف بٹھا دیا گیا ہے. اس خوف کو تو آنا ہی ہے, کیونکہ اس خوف کو علی مرتضیٰ نے بھی کہا تھا, بیان فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں اس دن سے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جس زمانے میں میرے چاہنے والوں کی خواہشات بڑھ جائیں گی. اگر ہم اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں تو دنیا کا کوئی سسٹم ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی سسٹم ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا. لیکن ہم سسٹم میں جو مغلوب ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے ساتھ جتنا چلنا ہے اتنا چلے, لیکن جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اصلی مسئلے کو, کہ پیغمبر اسلام نے جو آزادی کا درس دیا تھا انسان کو, بتوں کی خوف سے بچا کر توحید کے کلمے تک پہنچایا تھا, انسان کو غربت سے نکال کر ایک ہمراہ زمین پر لا کے کھڑا کیا تھا اسلام کی, وہاں پر انسان کو پھر احساس ہونے لگا کہ امیر کون ہے غریب کون ہے, امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا. غریب کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا, امیر کو اپنی دولت کا خطرہ ہو گیا تھا. بس اسی خوف کے ذریعے جو ہے بنی امیہ نے حکومت کرنا شروع کی, اور انہوں نے پہلے لوگوں کے نفس کی آزادی کو چھین لیا, ان کے نفسوں کو دنیا میں ملا دیا, اور لوگ اپنے مال کو بچانے کے لیے خاموش ہو گئے, اور امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے کہ فرزند رسول اس شہزادے سے کیا ٹکر کرتے ہو, اپنے آرام سے بیٹھو. امام حسین علیہ السلام اگر اس سسٹم کے ساتھ چل گئے ہوتے تو اس زمانے کے سب سے بڑے ہوتے, زمیندار بھی ہوتے. یزید نے یہی تو کہا تھا کہ حسین جو چاہیے دنیا کی اعلیٰ ترین چیز دینے کو تیار ہوں, بہترین حکومت دے دوں گا جہاں پر امیری کرو گے, بہترین عورت اگر چاہیے تو اس سے شادی کر دوں گا. یہ تمام چیزیں جب اس نے اس کو بیان کیا تو امام نے یہ پوچھا کہ یزید سے ذرا یہ پوچھنا کہ وہ اسلام کا خلیفہ تو بنا بیٹھا ہے, ذرا یہ بتایا کہ کسی بیٹے نے باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کی ہے, کسی بیٹے نے باپ کی متعلقہ سے شادی کی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا تو پھر تو چاہتا ہے جس دنیا کو میرے بابا علی مرتضیٰ نے طلاق دے دی اس کو حسین گلے لگا لے, اس کو حسین گلے لگا لے. عزیزان گرامی, اب پتہ چلتا ہے کہ باپ نے طلاق کیوں دی تھی اور بیٹے نے اس مثال کو استعمال کیوں کیا, کیونکہ دنیا کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو خریدنا چاہتے تھے. ارے کون مکا کے مالک ہے, ان کو کون خریدے گا؟ کہ جو فرشتہ بالوں پر کھو دے اور ان کے جھولے سے مس ہو کر اپنے بالوں پر حاصل کر لے اور کہے کہ انا عتیق الحسین من مثلی انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں, حسین وہ ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو منع نہیں کرتے. عزیزان گرامی, یہ ان کے یہاں پر ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ حسین کو دنیا کے ذریعے ڈرایا جا رہا تھا کہ حسین برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا سب کچھ آپ کا, آرام سے مدینے میں رہو یا کہیں اور چلے جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے جو دوسرا درس دیا ہے, دوسرا باب جو کھولا ہے, وہ پارسائی کا تھا. لوگوں کو پارسائی تو تھی لیکن اس میں حقیقت توحید نہیں تھی, لوگ عبادت گزار تو تھے لیکن ان میں توحید نہیں پائی جاتی تھی. ابھی ابو موسیٰ اشعری اپنے زمانے کا سب سے بڑا پارسا تھا, بڑا پارسا تھا. جب اس کو حکم بنایا گیا تو سب سے پہلے اس نے علی مرتضیٰ کو خلافت سے ہٹایا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے چڑھا دیا گیا تھا کہ تمہاری پارسائی کی سب تک. تو ایسی پارسائی نہیں کہ جس میں حق اور باطل کو ہی بھول جائے انسان, حق اور باطل کو ہی بھول جائے. اور بہت سے ایسے تھے کہ جو اپنے زمانے کے عبادت گزار تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, لیکن وہ اللہ سے ڈرنے کے معنی نہیں تھے, اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ خوف خدا رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کا یہی ہوا کہ جب پورا مدینہ علی مرتضیٰ کی بیعت کر رہا تھا, عبداللہ ابن عمر نے کہا میں علی کی بیعت نہیں کروں گا, میں علی کی بیعت نہیں کروں گا. तो लोगों ने कहा कि जब तुम्हारे बाबा का मरहला आया था, तुमने कहा था कि अगर एक रात भी बगैर इमाम के रह गए तो जहालत की मौत मर जाओगे, कल तुम्हें मौत भी आ सकती है, तो फिर तुम्हें जाहिल उठाया जाएगा। कहा हाँ, ये तो खौफ खुदा है कि अगर इमाम की बेयत नहीं करूंगा तो फिर मैं जाहिल की मौत मरूंगा। लिहाजा मदीने में दूसरा इमाम ढूंढने लगा कि कोई अली का हमपाया मिल जाए, जहां देखो जिसको देखो उसी ने अली की बेयत की हुई, उसको कोई ऐसा चाहिए था जिसने अली की बेयत ना कही हो। ढूंढते ढूंढते पूछा, पता चला हज्जाज बिन यूसुफ जो है उसने अली की बेयत नहीं की है। उसके पास पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने कहा, वो सो रहा था, लेटा था, उसने कहा कौन आया है? कहा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर आए हैं, वो चाहते हैं कि बेयत करें। कहा कि सुबह आना। कहा अगर सुबह मर गया तो बगैर इमाम के मैं जहालत की मौत मर जाऊंगा, इमाम भी और मामूम भी देखें दोनों। उसके पास बेहत लेने का टाइम नहीं है, इसके पास बेहत छोड़ने का टाइम नहीं है। लिहाजा कहता है कि जाओ अपना हाथ धो जल्दी से। कहा मैं अभी लिहाफ में लेटा हुआ हूं, मेरे सर्दी लग रही है, मैं नहीं कराना अभी, ने हाथ नहीं निकालना चाहता। कहा नहीं, मुझे अभी बेहत करनी है। तो हज्जाज ने अपना पैर निकाल दिया, कहा चलो इस पे कर लो। ये तारीख के वाकयात हैं, आप तारीख में पढ़ें, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। अजीजाने गिरामी, जब दर इल्म को कोई छोड़ता है तो फिर जलालतों की खाइयों में जाकर गिरता है। कि अली मुर्तजा का साथ छोड़ने के बाद दुनिया में ही पता चल गया कि कम से कम जिल्लत भरी बेयत तो करनी पड़ी। यानी पूरी दुनिया हाथों पे बेयत करती है, ये हजरत पैर पे बेयत कर रहे हैं, और वो भी उसकी जो नशे में सो रहा हुआ है, नशे में सोने वाले की बेयत कर रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अफसोस का मुकाम है कि इंसान से कहा जाए कि एक फ्रेश खाना है, एक वो खाना जिसमें मिट्टी गिरी हुई है, डस्ट गिरी हुई है, वो प्रेफर करें नहीं, मैं तो डस्ट वाला खाऊंगा। तो ये ना आकलाना है, ना सेहत के हिसाब से है, ना कानून है। अज़ीज़ाने गिरामी, हुकूमत हुक्मरानी दिख रहा था कि एक करीम है, एक लईम है, एक अल्लाह का शाकिर बंदा है और एक अल्लाह का बागी बंदा है। बंदा तो कह भी नहीं सकते, नहीं वो बंदगी में आते भी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन लोग अपनी नफ्स की कैद में इतने ज़्यादा थे और पारसाई के नाम पर उनको बड़ा फरेब दिया हुआ था, बड़ा फरेब दिया हुआ था अपनी पारसाई पर कि हुसैन खामा खामे अपना क्यों वक्त ज़ाया करते हो, यजीद की बैत कर लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाय हाथ में नज़दिल्ला। तीसरा मसला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था वो था जुल्म सितम और अदालत ख्वाही। लोगों पे जुल्म सितम हो रहा था लेकिन लोग इंसाफ तो चाहते थे लेकिन इंसाफ का तकाजा नहीं करते थे। आखिर ऐसा क्या माहौल बना दिया गया था कि इंसाफ चाहते थे लेकिन इंसाफ तलब नहीं करते थे, ना अपने लिए तलब करते थे ना दूसरों के लिए तलब करते थे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तमाम की तमाम बातें वो थी कि जो एक बड़ा मौजू बन के रह गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन मौजूआत को सही किया और कहा कि देखो हम इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम्हें हुर्रियत का दर्स दे जाएं, पारसाई का दर्स दे जाएं, तौहीद का दर्स दे जाएं। अब आप दुनिया को एक तरफ करके देख लो कि एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 हैं और एक तरफ पूरी दुनिया है, कि अब आप देख लिए कि तौहीद में कौन अजीम रहा। वलब यह कि वो 10 दिन के मकतब में रहे हों, रोजे आशूरा हर मरने वाला खुदा पर इतना यकीन रखता था कि फर्जंदे रसूल हमें मालूम है कि इस राह में जान देना जान नहीं जाने के बराबर है। फर्जंदे रसूल जो तौहीद आपने सिखा दी है, 1,24,000 अंबिया अपनी मेहनतों के बाद ना कर सके। खुदा का रसूल इसी तरह से दीन मुबीन इस्लाम कश्ती नूह की तरह गर्क हो जाता, कश्ती तूफान नूह की तरह गर्क हो जाता ये पूरा आलम इस्लाम अगर हुसैन ने इस कश्ती को सहारा ना दिया होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ वो मिसाल पेश कर दी कि अगर हक परस्ती की जाए तो दीन को बचाया जा सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर दो लोगों में मुकाबला हो, एक शख्स चाहता है दरवाजे को खोले, एक शख्स चाहता है दरवाजे को बंद रखे, और अगर दरवाजा ना खुले तो कौन जीता? फतह किसकी हुई? लोग कहते नहीं बराबर हो गया, टाई हो गया। टाई नहीं हुआ, जिसने बंद रखना चाहा वो जीता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद बैत चाहता था, इमाम बैत नहीं करना चाहते थे। शहादत पे मामला खत्म हो गया, यजीद थक गया लेकिन बैत ना ले सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम हस्ती के बावजूद, तमाम बच्चों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद लब पर शिकवा नहीं लाए, गले की खुश्क रगों को कटा के सजदे में हुसैन तुमने नमाजों को जिंदगी दे दी, बुझा के अपने 72 चराग मक्तल में चराग कब्र पैगंबर को रोशनी दे दी। वो कभी जालिम के आगे सर झुका सकता नहीं जिसने आंखों से नहीं दिल से पड़ी है करबला। मिट गए टका के कितने शाहजादों के गुरूर, आज भी कोहे अमल बनकर खड़ी है करबला। आज करबला के मुकाबले में कौन आ सकता है जो आकर ये कह दे कि हुसैन इसे बचाना चाहते थे और हमने खत्म कर दिया। दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता कि हुसैन जिस चीज को बचाना चाहते थे उसको कोई खत्म कर सके। हर रोज अजान होना, बल्कि हम 2 मरतबा ज्यादा अजान होना इस बात की दलील है, इस बात की दलील है कि हुसैन जो बचाना चाहते थे वो बचा गए। जैनब ने जालिम और दुश्मन के घर में जाकर हुसैन की अजा का परचम लहरा दिया, इससे बड़ी और क्या शिकस्त होगी उसकी, इससे ज्यादा कोई और शिकस्त नहीं हो सकती कि उसने जो जुल्म करना चाहे कर लिए, लेकिन ये घराना घबराया नहीं, क्योंकि अज्म यह था कि हमें मालूम है कि हमारी दीन हमारी इस कोशिशों से दीन बच जाएगा। और मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ फर्म में अज़ीज़ाने गिरामी दीन को बचाया गया। इमाम सैयद सज्जाद जब वापस गए हैं मदीने मुनव्वरा, तो इमाम के जिम्मे में 200 यतीम बच्चों की जिम्मेदारी थी, गिनती के 3-4 मर्द रह गए थे, 3-4, और तमाम शहदा की जौजाएं। उसके अलावा 150 और घराने थे कि जो फकर फाके की जिंदगी में थे, सैयद सज्जाद ने उनको सहारा दिया। अब ऐसे में बार बार लोग आके कह रहे हैं कि फर्जंदे रसूल बाबा का बदला लेते हैं, लेकिन इमाम जानते हैं कि बदला ऐसे नहीं लिया जाता कि अभी एक मरतबा और तलवार चले, और नहीं, इमाम ने इस आजादारी को किस तरह से सींचा। इमाम ने अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी, जमीनों को बेच के जो माल आया उससे गुलाम और कनीज खरीदने शुरू कर दी। अपने गुलामों को यह ताकीद की कि देखो मुख्तलिफ जबानों के गुलाम लाना, फर्जंदे रसूल आपकी कनीज का बयान है कि ना तो मैंने कभी रात को इमाम का बिस्तर बिछाया और ना दिन में मैंने इमाम को कोई खाना खिलाया। रात भर मेरा इमाम मुसल्ले पे बैठता था, दिन भर मेरा इमाम रोजे रखता था, इबादतों में मसरूफ रहता, तो फिर कनीजों की और गुलामों की जरूरत क्या थी। इमाम ने अपनी जमीनें बेच के कनीज और गुलाम खरीदे, उनको तरबियत दी, अखलाक इस्लामी सिखाया, सुन्नत नबवी सिखाई, शरीयत के अहकाम सिखाए, सैयद शहदा के मसाइब सिखाए। और जब वो तरबियत पा जाते थे तो इमाम उनको राह खुदा में आज़ाद कर देते थे और जाके कहते जाओ अपने वतन में जाकर तबलीग करना, मेरे बाबा की मुसीबतों का बयान करना। अज़ीज़ाने गिरामी, ये सैयद सज्जाद की सच्चाई की दलील है कि आज 1400 साल बाद भी हम जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि अली अकबर के नेज़ा लगा था, जनाब अली असगर के तीर लगा था। वरना न्यूज़ बदल जाती है, न्यूज़ बदल जाती हैं, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन सैयद सज्जाद पर हम कुर्बान हो जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदावंदे आलम ने हुसैन को 3 बेटे दिए, तीनों का नाम इमाम ने अली रखा, 3 बेटियां थी, तीनों का नाम फातिमा रखा। अज़ीज़ाने गिरामी, सैयद सज्जाद मेरा मज़लूम इमाम। अज़ीज़ाने गिरामी, सैयद सज्जाद की मज़लूमियत को आप जानना है, सैयद सज्जाद जैसा साबिर इंसान नहीं होगा। इंशाल्लाह कभी वक्त हुआ तो ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद अर्जमंद जनाब अली अकबर, जनाब उम्मे लैला इमाम की बड़ी बावफा ज़ौजा थी। उम्मे लैला का ख़ानदान रिश्ता एक तरफ से रसूल अल्लाह किसे मिलता था, एक तरफ से जनाब खदीजा से मिलता था, और उम्मे लैला का एक रिश्ता जो है यजीद के ख़ानदान से भी मिलता था। लेकिन जब कोई इनके घराने में तरबियत पा जाता है तो फिर अपने आबाओ अजदाद या अपने किसी रिश्तेदार की बुराइयां इन पर असरअंदाज नहीं होती। लिहाजा इस बीबी ने सिद्क दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 2 बच्चे दिए, एक फातिमा सुगरा जिनका नाम था, एक अली अकबर जिनका नाम था। जनाब सुगरा जो थी वो जनाब फातिमा की हमशक्ल थी, बीबी फातिमा की हमशक्ल थी। इमाम को जब इश्तियाक होता था अपनी माँ को देखने का तो जनाब सुगरा को देखते थे, और अली अकबर हमशक्ल पैगंबर थे। जहाँ से अली अकबर गुजरते थे रास्ते में मजमा लग जाता था और लोग खड़ा करके देखते थे कि ए बद्र कामिल, और लोग बताते थे अपने बच्चों को कि खुदा का रसूल ऐसा था। अखलाक का मुरक्का, ज़बाने नरम रखने वाला अली अकबर, चांद सा चेहरा। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने घराने के साथ मुख्तसर से काफले के साथ है। انصار کی یہ کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے کوئی بنی ہاشم کا شیر شہید ہو جائے. حسین ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے قربانیاں اپنے بنی ہاشم سے شروع کروں. کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے چاہا لیکن لوگوں نے قدموں میں گر گئے کہ فرزند رسول ہم صبح قیامت رسول کے خدا کے رسول کو منہ نہیں دکھا پائیں گے کہ جب تک انصار زندہ ہیں عزا کی باری نہیں آنی چاہیے. فرزند رسول اگر یہ جانے 70 مرتبہ ملے تو آپ پر قربان. اعزان گرامی دیکھتے دیکھتے بن شیروں سے سج گیا. امام کے جانثار شہید ہو گئے. امام بار بار ایک ایک جانثار کو یاد کر کے گریا فرماتے تھے. وہ وقت آیا کہ جناب علی اکبر آئے اور آنے کے بعد کہا بابا اتنا وقت ہو گیا, چچا عباس بھی مارے گئے, بھیا قاسم بھی شہید ہو گئے, اون محمد بھی سدھار گئے, آپ کے جانثار بھی شہید سدھار گئے, بابا اب آپ مجھے رن کی اجازت دے دیجئے. امام نے فرمایا بیٹا تمہیں پھپھی زینب نے پالا ہے, تمہارا اختیار زینب اولیاء مقام پر ہے, اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہے تو میں ضرور جانے کی اجازت دوں گا. یہ کہہ کر جناب زینب اولیاء مقام کی خدمت میں آئے. زینب نے کہا علی اکبر کیا اون محمد کی شہادت بھی تمہیں نہیں بچا پائے گی؟ کہا پھپھی اماں اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ میرے بابا کو ماں کے نام سے یاد کر رہے ہیں. حسین ابن علی کی جگہ حسین ابن فاطمہ کہہ کر پکار رہے ہیں. میری دادی کا نام میدان میں لیا جا رہا ہے, میں جانتا ہوں میرے بابا کی کیفیت کیا ہے, اب مجھے جانا پڑے گا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے دلیلیں دیں, پھوپھی اماں روز محشر اگر میری جدہ نے پوچھا کہ فاطمہ کا لال تجھے عزیز نہ تھا, اے زینب تجھے علی اکبر عزیز تھا, لہٰذا میری شہادت کی اجازت آپ کے ہاتھ میں ہے. جناب زینب اولیاء مقام نے کہا اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لو. ام لیلہ نے کہا کہ علی اکبر میں نے تمہیں پالا ضرور, تمہیں میں نے اس دنیا میں ضرور لائی ہوں لیکن تمہیں پالا تمہاری پھوپھی نے ہیں. اے لال میں تو یہی چاہتی تھی کہ کوئی میری طرف سے بھی میرے آقا کی نصرت کرے, کوئی میری طرف سے میرے آقا کی نصرت کرے. ایک مرتبہ ام لیلہ اور زینب اولیاء مقام امام کی خدمت میں آئی, فرزند رسول میرے ماں جائے علی اکبر کو اجازت دے دیجئے. عزیزان گرامی علی اکبر کو دولہا بنایا گیا, نبی کا جامہ پہنایا گیا, وہی امامہ پہنایا گیا, اس کے بعد جوان کو تیار کر دیا گیا. میری جان قربان ہو جائیں, جناب زینب بڑی حسرت و یاس سے دیکھ رہی ہیں. علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا, کہا اے بیٹا ذرا مڑ کے دیکھتے جانا, ذرا دیکھتے رہنا. کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا تم صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا. یقیناً حسین چاہتے تھے آخری لمحے تک اپنے نانا کی صورت ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے تاکہ نانا کے دیدار ہوتے چاہیں. جناب علی اکبر عزیزان گرامی میدان میں آئے, آنے کے بعد حملہ کیا, بڑھ بڑھ کے حملے کیے, بکھری ہوئی فوج نے سمٹنا شروع کیا. علی اکبر کے مقابلے میں بڑی خطرناک تازہ دم فوج لائی گئی. حسین علی اکبر کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی آپ دیکھیے علی اکبر کی جنگ کو کس طرح سے خیمے میں دیکھا جا رہا ہے. میدان قتال سے تھوڑی دوری پر نواسۂ رسول علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں, جناب فضا در خیمہ پر امام کو دیکھ رہی ہیں, جناب رباب فضا کا چہرہ دیکھ رہی ہیں, جناب زینب رباب کا چہرہ دیکھتی ہیں اور لیلہ جناب زینب کا چہرہ دیکھتی ہیں. جیسے ہی کوئی حالات میں تبدیلی آتی ہے حسین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, تو فضا کے چہرے میں تبدیلی آتی ہے. فضا کے ساتھ رباب متوجہ ہوتی ہیں, رباب کے بعد زینب اولیاء مقام متوجہ ہوتی ہیں, جناب لیلہ متوجہ ہوتی ہیں. اب جو تازہ دم لشکر علی اکبر کے مقابلے میں لایا گیا, امام نے فرمایا اے فضا ام لیلہ سے کہو میرے لال کے لیے دعا کرے. ارے تازہ دم لشکر اس کے مقابلے میں آیا ہے, میرا تجنہ دھن لال, اے میرے معبود میرے بچے کو ان جوانوں پر فتح عطا فرما. اے لیلہ ماں کی دعا بچے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. لیلہ سے دعا کے لیے کہا گیا, لیلہ نے ہاتھوں کو پھیلایا, کہا میرے معبود
اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو حسین سے ملا دے، میرا آقا تمنا کرتا ہے۔ ابھی دعا پوری نہ ہونے پائی تھی، فاتح بیٹا واپس لوٹا، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، اے میرے لال، اے میرے لال کا بابا، میں نے فوج کو تہ تہ کر دیا، بابا میں نے ان دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا جو میری دادی کا نام لے رہے تھے، بابا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ کہا علی اکبر، میں جانتا ہوں ایک فاتح بیٹا آیا ہے۔ علی اکبر نے کہا، بابا اگر دو بوند آپ پانی کا مل جاتا، دو قطرے آپ مل جاتا، تو میں ان کو بتاتا میں کون ہوں۔ بابا پیاس ستائے جا رہی ہے، جسم سے خون بہت بہ چکا ہے۔ علی اکبر نے ایسے مقام پر حسین سے پانی مانگ لیا۔ عزیزو، علی اکبر نے پانی مانگا، امام کیا کہتے؟ بس اتنا کہا، میرے لال، میرے لال، اپنی زبان میرے دہاں میں دے دو، شاید کوئی تسلی مل جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو امام کے دہان میں دیا، ایک مرتبہ فوراً کھینچ لیا، کہا، بابا آپ کی زبان پر تو کاٹے پڑے ہیں۔ عزیزو، اس تصور تشنگی کو ہم اور آپ نہ پڑھ سکتے نہ سمجھ سکتے، کیونکہ ہمیں پیاس نہیں لگتی ہے، ہمیں پانی کی خواہش ہوتی ہے۔ جہاں خواہش ہوئی ہم نے پانی پی لیا۔ اور صحرا میں رہنے والے ان لوگوں سے پوچھو جنہیں معلوم ہے پیاس کسے کہتے ہیں، عرب کا جلتا ہوا صحرا، ارے سارے دن کی، تین دن کی بھوک پیاس، اور انصار و اقربا کے جنازے اٹھانا، لہو کا بہنا، پیاس میں شدت بڑھائے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے انگشتری کو اتارا، اے میرے لال اس کو اپنے دہن میں رکھ لو، ساقی کوثر کے لال ہو، اے میرے لال تمہارے دادا تمہارے لیے جام کوثر لے کے کھڑے ہیں۔ علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا، بوڑھا باپ ٹھوکرے کھاتا ہوا، اے علی اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، نرغے آدھا میں گر گئے، آواز دی، السلام علیک یا ابتا، علیکن منی السلام، علیک السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ حسین عباس کے بعد کمر شکستہ، علی اکبر کے بعد دکھائی نہیں دیتا، حسین کے سامنے زمانہ اندھیرا ہو گیا۔ اینا علی اکبر، حسین ٹھوکر کھاتے جاتے ہیں۔ علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا؟ زخمی بیٹھا زمین پر گرا ہوا ہے۔ اے میرے لال، اے میرے حبیب خدا کی نشانی، اے ان کی ہم شکل پیغمبر۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو پیار کرنا شروع کیا۔ حسین نے دیکھا علی اکبر کا ہاتھ ہاتھ میں لے لے، علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ اے میرے لال سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اے میرے لال کیا تکلیف ہے؟ کہا، بابا میرے سینے میں برچی کا پھل چلا گیا ہے اور وہ بھالا ٹوٹ چکا ہے۔ ایک مرتبہ کہا، بیٹا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، میں کہوں گا ابراہیم، اے اسماعیل آ کر دیکھیے، نبی کا نواسہ ذبح عظیم کی امتحان دے رہا ہے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ آئیے، اے عیسیٰ روح اللہ آئیے، اے نجف کے علی، کربلا کا حسین پریشان مبتلا ہے امتحان میں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ کو زخم علی اکبر میں ڈالا، اے بیٹا میں ابھی پرچی کا پھل نکال دیتا ہوں۔ اب جو پرچی کا پھل نکالا، کیا دیکھا کہ پرچی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ آ گیا، روح نے قفس انصری سے پرواز کیا۔ حسین اس فکر میں، جوان کے لاشے کو کس طرح لے جائے؟ اے زخمی علی اکبر، اگر ماں دیکھے گی دل پھٹ جائے گا، زینب دیکھے گی دل پھٹ جائے گا۔ حسین نے علی اکبر کے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کیا، چاہا کہ علی اکبر کو زمین کربلا سے اٹھائے۔ عزیزو، یہ روحانی کیفیت ہے۔ حسین تھک گئے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی آخری مدد کر دو، جوان کا لاشا لانا ہے۔ بنی ہاشم کے بچے بڑے، حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، بچوں نے سہارا دیا، علی اکبر کو خیمے میں لائے، اور لانے کے بعد جب خیمے میں رکھا، زینب نے اپنے آپ کو گرا لیا، اے علی اکبر، کون محمد کی قربانی بھی میرے چاند کو نہ بچا سکے۔
وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
ماتم حسین.